समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
श्रोताओं, प्रकृति ने कभी उस इंसान के साथ छल नहीं किया जो उससे प्यार करता है। इसलिए प्रकृति को प्यार दें, इसके संसाधनों को संजोकर रखें, क्योंकि इन पर जितना हक हमारा है उतना ही हमारी आने वाली पीढ़ी का भी है। इस सकारात्मक विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे के आज के अंक की। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं वीसी प्रमोद। गुड मॉर्निंग प्रमोद।
Good morning, Sir Firozi, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. We bring for you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 12th of May 2026.
और काफी कुछ जैसा आपने बताया प्रमोद होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
That's right.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है।
That's right. Assam is set to witness a historic political event today with the swearing in of Himanta Biswa Sarma as the chief minister of the state for a second consecutive term, making him the first non-Congress leader in Assam's history to hold the post for back-to-back terms. Dr. Sarma and his council of ministers will be administered the oath of office in secrecy by Governor Lakshman Prasad Acharya. We have a report.
Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी।
Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to the UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach the UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links.
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्यकर जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति सरकार की सक्रियता दर्शाती है। उन्होंने रोकथाम, शुरुआती पहचान और सक्रिय देखभाल के साथ किफायती और उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने पर बल दिया। श्री नड्डा ने प्रभावी पहल के लिए विज्ञान, नीति और कार्यान्वयन के समन्वय पर जोर दिया।
हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
US President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support. Massive life support, he added. During an event on maternal health care at the White House, Trump asked the participants to keep their remarks short as he had a meeting with a large group of generals on the issues of Iran.
और श्रोताओं अब रुख कर रहे हैं खेलों का। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
Staying on with sports news, in Bangladesh, a three-member inquiry committee has been constituted to probe the reason behind the national cricket team's withdrawal from the ICC Men's T20 World Cup in India. According to an official government order dated the 10th of May, former additional secretary Dr. AKM Oliullah will head the panel, which also includes former Bangladesh captain and current chief selector Habibur Bashir and Supreme Court lawyer Faisal Dastagir. The committee has been asked to submit its findings within 15 working days.
प्रमोद, हमने अपने श्रोताओं को देश दुनिया की तो खबर दे दी, अब वक्त है कि रुख कर लिया जाए अपने महानगरों की ओर।
Absolutely, and I'll start from the south.
बिल्कुल।
So I'll start with Chennai. The Atomic Energy Regulatory Board has approved the restart and continued operation of Unit 2 of the Tarapur Atomic Power Station on the 7th of this month, following the successful completion of a major refurbishment work undertaken under the Nuclear Power Corporation of India Limited. TAPS Unit 1 and 2, India's first nuclear power reactors, based on the boiling water reactor design, commenced commercial operation in 1969. The refurbishment included complete replacement of reactor coolant recirculation piping with forged piping and fittings made of advanced corrosion-resistant stainless steel. The other safety upgrades included commissioning of reactor containment filtered venting system, the alternate cooling water system, and other things. Further, during the ongoing outage, inspection of critical reactor components such as the reactor pressure vessel wells were carried out towards assessment of aging status and residual life assessment. The evaluations have shown that the reactor can continue safe operation with the normal maintenance and surveillance program. Sir Firozi, aap hame kahan le ja rahe hain?
Ye program Delhi se hi broadcast ho raha hai. Pramod, to sabse pehle baat karenge apni rajdhani ki.
Okay.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री सोमनाथ की भव्य यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये विश्व को सनातन संस्कृति की अमर शक्ति और उसके पुनर्जागरण का संदेश देता है। और प्रमोद, मेरे पास एक और खबर है राजधानी दिल्ली से ही।
बिल्कुल,
दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी निर्माण और तोड़फोड़ यानी CND साइट्स पर लगभग 100 GSM मोटाई वाले ग्रीन नेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार सख्त नियम, तकनीक आधारित निगरानी और वैज्ञानिक उपायों से प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है। और प्रमोद, हमारा अगला महानगर कौन सा है?
बेंगलोर।
बिल्कुल,
जिसका नाम अभी बेंगलुरु हो गया है।
जी।
राइट, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल माई राइड फॉर्म्ड अंडर द के राइड टू इम्प्लीमेंट द बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट BSRP हैज इश्यूड अ वर्क ऑर्डर टू द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई टू सप्लाई 153 एयर कंडीशनड ब्रॉड गेज मेट्रो टाइप कोचेस रिक्वायर्ड फॉर कॉरिडोर 2 और 4 ऑफ द सबर्बन रेल प्रोजेक्ट। सरफरोजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, बिकॉज बैंगलोर में इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि ये जो सबर्बन,
हम मीम भी बहुत देखते रहते कि मैं रील स्क्रॉल करती हूँ तो उसमें अक्सर काफी जो है फनी सरकैज़म, बहुत मजाक एक तरह से उड़ाया जाता है बेंगलुरु के ट्रैफिक का। एब्सोल्युटली,
इनफैक्ट मैंने एक रील देखा था उसमें ये था कि दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहां पे अगर आप गूगल मैप्स लगाओ तो वॉकिंग विल बी फास्टर देन गोइंग बाय कार। So this is a very good initiative by the government. They are starting a suburban railway project to decongest Bangalore. So the coach factory in Chennai has to commence the supply of the coaches within the next 18 months, was told by PM Modi. This is in line with ensuring that the required train coaches are available by the time the track and systems infrastructure work for Corridor 2 and 4 are completed. During the Pragati review meeting held in December 2025, Prime Minister Modi had set this timeline for the suburban rail project to decongest Bengaluru.
और प्रमोद, उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अखिल भारतीय उद्योग संघ ने इक्वाडोर गणराज्य में भारत की राजदूत अनीता शुक्ला के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के उभरते अवसरों पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए सुश्री शुक्ला ने कहा कि इक्वाडोर खनन, पेट्रोकेमिकल्स, अवसंरचना, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, विमानन, फिनटेक और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष डॉ विजय कलांत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच कच्चे तेल और कृषि उत्पादों के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उपकरण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है, जबकि हरित ऊर्जा, कृषि तकनीक, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल नवाचार में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
Moving on to Hyderabad, Telangana Chief Electoral Officer CEO Sudarshan Reddy has directed district election officers and collectors to ensure that 90% of the Special Intensive Revision SIR mapping is completed by the end of this month. During a video conferencing held from his Hyderabad office with DEOs and EROs, the CEO emphasized the need to accelerate the mapping process ahead of the upcoming Special Revision announcement by the Election Commission of India. He urged officials to involve residential associations and gated communities in the mapping process, suggesting that government employees and the public should voluntarily coordinate with booth-level officers, BLOs. To facilitate this, he requested the setup of help desks and the involvement of self-help groups and ration shop dealers.
और प्रमोद, अब रुक कर रहे हैं अपने आखिरी महानगर की ओर, कोलकाता की ओर। हमने हाल ही में देखा कितना, किस तरह का चुनावी घमासान हुआ पश्चिम बंगाल में, और अब वहां की नई राज्य सरकार ने सोमवार से अपना कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की और प्रशासनिक और कानून व्यवस्था संबंधी बैठकें की। मनोज अग्रवाल को राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई तबादले भी किए गए हैं। एक अन्य घटनाक्रम में आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित कई केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 45 दिनों के भीतर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में जारी किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। और प्रमोद, महानगरों की जानकारी के बाद अब जान लेते हैं महानगरों का मौसम भी।
जी,
सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। यहां बारिश के साथ आज तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। शहर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और प्रमोद, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
जी, मैं शुरू करूंगा चेन्नई से। इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस। द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। Bengaluru is also expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees Celsius. The maximum will be around 35 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder and lightning. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
और प्रमोद, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और अपने श्रोताओं को बताने का कि आज यानी 12 मई का दिन क्यों अहम है।
That's right. Today we observe International Nurses Day. This day is celebrated every year on the 12th of May to honor nurses and their service to society. Sir Firozi, I think ये जो नर्स की जो प्रोफेशन है बहुत नोबल प्रोफेशन है।
बिल्कुल,
है ना, किसी का ख्याल रखना।
और एक जो मैं चीज ऐड करना चाहूंगी प्रमोद, वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल अपने तन मन धन से सेवा करते हैं मरीजों की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक तय टाइम होता है। वो आते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं और चले जाते हैं। पर इफ यू सी नर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं 24 घंटे उस मरीज जो रहता है उसकी डेडिकेटेड सर्विस में लगे रहते हैं।
एब्सोल्युटली, सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम।
बिल्कुल बिल्कुल,
है ना, ठीक है, ऐसा मिलना अलग बात है, बट किसी का एक्चुअली केयर करना, बिकॉज मेरे पापा भी उसी स्टेट में थे 5-6 महीने, तो मैंने देखा था वो जो नर्सेस उनका ख्याल रख रहे थे। They were doing it with so much of love and affection.
और कोविड के दौरान जो हमने देखा, अपनी जान गवाकर उन्होंने दूसरों की जान बचाई।
Absolutely. Nurses take care of patients with kindness, patience and dedication. They work day and night in hospitals and health centers to save lives and help people recover. As you rightly said, during difficult times like COVID-19 pandemic, nurses served people with great courage and commitment. On this special day, we thank all nurses for their hard work and selfless service.
बिल्कुल प्रमोद, और अब जिक्र कर लेते हैं उन शख्सियत का जिनके नाम पर नर्सिंग डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सिंग डे। 1820 में इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ। इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है और जैसा कि हमने कहा, इन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया जाता है। इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायलों की सेवा की। 1860 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की और पेशेवर नर्सिंग की नींव रखी। हर साल भारत में उत्कृष्ट काम करने वाली नर्सों को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और प्रमोद, अपने श्रोताओं को बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। और मुझे लगता है ऑन पॉइंट जो है ये थीम रखी गई है।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
और अब समय है कुछ और घटनाओं का जिक्र करने का जो आज ही के दिन घटित हुई।
जी,
राठौर वंश के शासक रहे राव जोध सिंह ने आज ही के दिन 1459 में गौरवशाली इतिहास समेटे राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर की स्थापना की। इन्होंने पहले मेहराना किले की नींव रखी, फिर इस किले के आधार पर जोधपुर का नाम रखा गया। इससे पहले जोधपुर का नाम था मारवाड़। राव जोधा ने पहले अपनी राजधानी मंडोर को बनाया, बाद में इन्होंने राजधानी जोधपुर में स्थानांतरित कर दी।
That's right. मैं आपको करीब 90 साल और आगे ले जाऊंगा। 1551, the San Marcos University is established in Lima, Peru, as the oldest continuously operating university in the Americas. And in 1846, the U.S. Congress overwhelmingly approved a declaration of war against Mexico, starting the Mexican-American War.
और मैं आपको ले जा रही हूँ लगभग 200 साल पीछे। 1666 में आज ही के दिन शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे। इसके बाद की घटनाओं और उनके साहस ने मराठा साम्राज्य के इतिहास को नई दिशा दी। आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने के बाद राज बिहारी बोस आज ही के दिन सानुकी मारू जहाज से जापान के लिए रवाना हुए। इन्होंने विदेशी धरती से भारत की आजादी की अलख जगाई।
अगर मैं आपसे एक क्विज पूछूं छोटा सा, तो आप बता पाओगे?
चलिए आप पूछिए, देखते हैं।
द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपके हिसाब से कब आया था?
I'm guessing around 1940.
Very good, 1941. Conrad Zuse presents the Z3, the world's first working computer in Berlin. And in 1926, explorer Roald Amundsen and his crew aboard the airship Norge flew over the North Pole. This is recognized as the first undisputed verified aerial reaching the pole. In 1949, the Soviet Union officially lifted the 11-month blockade of West Berlin. The success of the Western Allies' Berlin airlift forced the reopening of land routes, marking a major de-escalation in the early Cold War.
और 1949 में ही विजयलक्ष्मी पंडित ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में भारत की राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। वो अमेरिका में भारत की पहली महिला राजदूत बनी।
In 1967, the first ever quadraphonic concert was held when Pink Floyd performed the Games for May concert in London. And in 2020, on this day, Prime Minister Narendra Modi gave a clarion call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. He said that a self-reliant India will stand on 5 pillars: economy, infrastructure, system, vibrant demography, and demand.
और प्रमोद, हमने काफी घटनाओं का जिक्र किया जो आज ही के दिन घटित हुई और जिनकी वजह से आज का दिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है। पर आज ही के दिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस दुनिया में आए या इस दुनिया से आज ही के दिन विदा हुए। अब उन लोगों का भी जिक्र कर लेते हैं।
That's right.
सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रगतिवाद की पहली पंक्ति के कवि शमशेर बहादुर सिंह को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 को। ये हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के भी विद्वान थे। इनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता शिल्प संरचना है, यानी जो शब्दों के माध्यम से चित्र रचना करती है। इसका कारण चित्रकला के प्रति उनका लगाव था। इनकी मुख्य कृतियों में कुछ कविताएं, चुका भी हूं मैं नहीं इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, शामिल हैं। 1977 में चुका भी हूं मैं नहीं के लिए इन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सहजता अगर इंसान का गुण है तो शमशेर बहादुर सिंह जीवन इसका उदाहरण है। ये किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं दिखाते थे प्रमोद। जैसा इनका जीवन रहा वैसा ही इन्होंने लेखन किया। और अब हम एक इनका कविता पाठ अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, जिससे जो ये वर्ड है, जो ये बयान है, ये और ज्यादा सच साबित होगा।
जैसे मेरी पसलियां खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं, जो मेरी आंखों का सूनापन है, ठंड भी एक मुस्कराहट लिए हुए है जो कि मेरी दोस्त है। कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका, आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है, मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ।
That's right. 12th of May is also the death anniversary of famous American singer, actor and television personality Perry Como was. In fact, he was known popularly as Perry Como. During a career spanning over more than half a century, he recorded exclusively for RCA Victor for 44 years, from 1943 until 1987. And I want to tell a small story, Saifuri. When I was small, I lived in London. And lunch ke baad, mere papa ke favorite singer the, Perry Como. तो लंच के बाद हमारा एक रिचुअल था कि पापा रिकॉर्ड लगाते थे एंड वी यूज टू लिसन टू हिज सॉन्ग. तो मेरे जो बचपन का फर्स्ट सॉन्ग है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ.
मतलब आप काफी रिलेट कर पा रहे होंगे.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.
आई हर्ड शी सैंग अ गुड सॉन्ग, आई हर्ड शी हैड अ स्टाइल, एंड सो आई केम टू सी हर टू लिसन फॉर अ व्हाइल. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words.
कैसा लगा आपको?
बहुत कमाल. मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं बचपन की यादों में पहुंच गए होंगे.
जी सच में. Well, moving on from Perry Como to Sukumari. Sukumari was also a famous Malayalam actress who died today in 2013. And she is known for her works in Malayalam and Tamil films. In a career spanning more than five decades, she appeared in more than 2,500 films, predominantly in Malayalam, Tamil, Telugu, along with a few Hindi films also. And one of her famous movies in which she got an award was T.P. Balagopalan M.A. And we have a song from that movie. Wo sun lete hain.
Bilkul.
Oru poovilum thein nirayum vasandami vide virunnu vannal oru kinavilum nee nirayum sangalpathinu chiragu vannal.
And now moving on to birthdays, so we have the birthday of Amita Prakash, an Indian film actress. She began her acting career when she was just 4 years old and acted in both Bollywood and Malayalam films. She has since been seen in a myriad of Bollywood films, television commercials and television reality and fiction shows. Her first television commercial was for a local footwear company in Kerala. And she went on to do a lot of films with Rajshree Films, playing the character of Choti in Suraj Barjatya's Vivaha. Her performance in Vivaha was hugely appreciated by critics, and we have a song from that film.
Do anjane ajnabi chale bandhne bandhan hai re dil mein hai ye uljhan. मिलकर क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले.
And today is also the birth anniversary of famous Malayalam actor Shivaji, not Shivaji Ganeshan, ये एक और शिवाजी है. And he did mostly Malayalam films during the 1980s and 1990s. He was doing a very, very good job, but suddenly he died of a cardiac arrest.
So sad.
And humne unko kafi miss kiya. And his debut film was Kaliya Mardanam in 1982. And we have a song from that movie.
Kiliye kiliye, mani mani megha sopil, oru malanullan pogum.
जाने माने निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की आज जयंती है. इन्होंने राम राज्य, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हिमालय की गोद जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश पिक्चर्स और प्रकाश स्टूडियो की स्थापना की. विजय भट्ट को हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करने का श्रेय जाता है. इनकी फिल्मों में महान शास्त्रीय कलाकारों ने कई बार एक साथ अपनी गायकी या वादन का फन बिखेरा, जैसे बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खां और पंडित डीवी पलूस्कर ने आज गावत मनमोरा गीत गाया था.
आज गावत मन में रो झूम गे, आज गावत मन में रो झूम गे, तेरी तान भगवान गावत मन में रो झूमके, आज गावत मन में रो झूमके, तेरे तायन भगवान आज गावत।
दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाजत सर फिरोजी और वीसी प्रमोद को, कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
दैट्स राइट, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात, अ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।